हाँ जी, हम करने जा रहे हैं आज अपने डायरेक्टर के लास्ट क्लास की समरी, जिसमें हमने कई सेक्शंस किए, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेक्शंस आपको करने हैं आपकी केवल समरी बुक से। आज की समरी बुक के अंदर भी मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग कराई है, काफ़ी नोटिंग कराई है, तो इसलिए इस समरी बुक की भी कॉपी जो है मैं LMS पर डाल रहा हूँ अपनी इस रिविज़न क्लिप के साथ में। आपको इसकी कॉपी आज रिविज़न कंटेंट नाम की फाइल के अंदर मिल जाएगी, और जिसका नाम लिखा होगा रिविजन कंटेंट ऑफ लास्ट क्लास ऑन डायरेक्टर्स। ठीक है जी, अब सुनिएगा, आज के क्लास में जो हमने शुरू किया चैप्टर सेक्शन, वो किया पहला सेक्शन 150, जो कहता है सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड डेटा बैंक। ये कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए इतनी सारी क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका अल्टीमेटली सिलेक्शन होगा कैसे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सिलेक्शन होगा आउट ऑफ अ डेटा बैंक, जो डेटा बैंक मेंटेन करेगा कोई बॉडी या इंस्टीट्यूट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, और मगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने से पहले उसका ड्यू डिलीजेंस कंपनी करेगी। अब यहाँ ड्यू डिलीजेंस की जब हम बात करते हैं ना, तो कंपनी में ड्यू डिलीजेंस कौन करता है, हम पढ़ेंगे आगे जाकर। एक कमेटी आएगी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, सेक्शन 178, वो प्लस बोर्ड दोनों करते हैं, बट फिलहाल वहां पे जाके देखेंगे आगे। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अप्रूव्ड किया जाएगा जनरल मीटिंग में, और ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखा जाएगा, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजेंगे तो उसमें लिखा जाएगा कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्रपोज कर रहे हैं, और वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर दिया जाएगा कि वो व्यक्ति क्वालिफाइड है अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। और ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जब लास्ट क्लास में मैंने 149 सबसेक्शन 8 करवाया था, तो उसके अंदर यही के यही शब्द करवाए थे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में ओआर के थ्रू होगा, और उसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन किया जाएगा कि प्रपोज डायरेक्टर जो है वो क्वालिफाइड है अंडर सेक्शन 149(6) टू बी अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। फिर आज की क्लास में हमने किया सेक्शन 151, जो कहता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है? सबसे पहली बात, स्मॉल शेयर होल्डर क्या होता है? स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब होता है ऐसे शेयर होल्डर जो कंपनी में 20,000 रुपए तक की नॉमिनल वैल्यू होल्ड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट केवल लिस्टेड कंपनी के लिए है, और लिस्टेड कंपनी के लिए भी मैंडेटरी नहीं है। लिस्टेड कंपनी मे अपॉइंट एनी वन SSD। इसका अपॉइंटमेंट होता कैसे है? इसका अपॉइंटमेंट 1,000 शेयर होल्डर जब स्मॉल शेयर होल्डर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, या फिर 1/10 ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, दोनों में से जो भी सेटिस्फाई हो जाए तब इसका अपॉइंटमेंट होता है। बट यहां पर एक बात समझने वाली है, वो क्या? मान लीजिए कंपनी के 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन सबमिट की टू द लिस्टेड कंपनी की, प्लीज आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर दीजिए। सवाल उठा, क्या लिस्टेड कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करने से मना कर सकती है? द आंसर इज नो। बट आप कहेंगे सर शब्द तो है मे, तो वहां पे तो वो मना कर सकती है? नहीं, मना नहीं कर सकती। मैं अब कह सकता हूं कि एक्चुअल में दो तरीके से अपॉइंटमेंट होता है। पहला, एक तो सुओ मोटो मतलब अपने आप, यहां पर शब्द आता है मे, बट जहां पर 1,000 शेयर होल्डर ने नोटिस दिया, या फिर 1/10 ऑफ द शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर ने नोटिस दिया, यहां पर कंपनी में कहूंगा शेल अपॉइंट। यहां पर कंपनी तो मना नहीं कर सकते, यहां पर तो तुम्हें अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा, यानी कि लिस्टेड कंपनी तुम अपने आप मे, सुओ मोटो के लिए मे, और इस एप्लीकेशन के बाद शेल लग जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा स्मॉल शेयर होल्डर नोटिस देंगे कंपनी को कम से कम 14 दिन पहले बिफोर द मीटिंग। इस नोटिस के साथ में बताया जाएगा नाम, एड्रेस, फोलियो नंबर स्मॉल शेयर होल्डर्स का भी, प्लस स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स का भी। बट क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का स्मॉल शेयर होल्डर होना जरूरी है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। और अगर वो नहीं है तो फिर उसकी ये वाली डिटेल नहीं दी जाएगी, नॉट रिक्वायर्ड इफ द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर डज नॉट होल्ड एनी शेयर। क्लियर, आगे मैं कह सकता हूं यहां से मेरे को प्रेरणा यह मिली है कि अगर कोई व्यक्ति स्मॉल शेयर होल्डर नहीं है तो भी वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। फिर हमने किया स्टेटमेंट विद द नोटिस साइंड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। जब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के द्वारा साइन किया गया आप नोटिस लेके आते हो ना, तो उसके अंदर उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके अंदर यह भी लिखा जाएगा कि ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, और उसकी कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर भी दी जाएगी। आगे, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जाएगा प्रोवाइडेड इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 और 7। यानी कि यहां पर मैंने कंबाइन रीडिंग करके आपको एक कॉन्सेप्ट बनवा के दिया। वो क्या? मैंने कहा जी कंबाइन रीडिंग करो, अगर पॉइंट नंबर 4 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कंसीडर्ड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और पॉइंट नंबर 9 क्या है, आफ्टर सीजेस टू होल्ड स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, मतलब अगर कोई व्यक्ति स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं रहा तो फिर उसका कोई अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा कंपनी से, After ceases to hold small shareholder director, no appointment association with the company for 3 years directly or indirectly. कोई एसोसिएशन कंपनी से कंपनी के साथ उसका नहीं होने वाला, ठीक है जी। अगर एक व्यक्ति स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं अब छोड़ चुका है, 3 साल बाद उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं रहेगा, कोई रीअपॉइंटमेंट वगैरह नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब मैंने कहा मैं पॉइंट नंबर 4 प्लस पॉइंट नंबर 9 को ज्वाइन करके पढ़वा रहा हूं, वो क्या है? मैंने कहा जी पॉइंट नंबर 4 कहता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह होगा, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन उस पर भी लगेगी। ये कहता है, फिर पॉइंट नंबर 9 कहता है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट वगैरह नहीं होगा। अच्छा आगे बढ़ता हूं, मैं कहता हूं जी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टेन्योर 3 साल के लिए है, और मैं और वैसे नॉर्मली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर जो है वो 10 साल के लिए होता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि स्मॉल शेयर होल्डर है, और दूसरा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि स्मॉल शेयर होल्डर नहीं है बल्कि अदरवाइज है, ठीक है जी। अगर वो अदरवाइज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उसका टेन्योर 10 साल है, बट अगर वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के फॉर्म में है तो उसका टेन्योर 3 साल है, ठीक है जी। यहां पर 10 साल मतलब 5 साल के 2 टर्म्स लगती हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि कभी भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं रहा, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो ही हैज टू वैकेट हिज ऑफिस। चले, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के लिए हमने कहा एक प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया है, मतलब आपको क्या करना पड़ता है, आपको 1000 शेयर होल्डर या तो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, या 110 शेयर होल्डर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, या कंपनी सुओ मोटो अपॉइंट कर देगी, क्या यहां पर 160 लगेगा? द आंसर इज नो, 160 नहीं लगेगा। अगर 160 नहीं लगेगा तो क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करवाने के लिए 1,00,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना जरूरी है? द आंसर इज नो, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देने की जरूरत नहीं है। आगे, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा सेक्शन 152 के जैसे ही, यानी कि जनरल मीटिंग में ही अपॉइंटमेंट होगा। नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, बड़ी सीधी सी बात है। ये तो एकदम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह है, तो क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने कहा था टोटल डायरेक्टर में आता है सेक्शन 152 सबसेक्शन 6, याद करो मैंने कहा था कि टोटल डायरेक्टर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा दो, वहां काउंट नहीं होता। जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काउंट नहीं होता तो ये भी तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह ही है, तो ये भी काउंट नहीं होगा, इसलिए लिखा है नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। मैक्सिमम टेन्योर 3 साल, फिर कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं। नो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इफ पर्सन डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164, यानी कि अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो 164 के अंदर तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकते, आपको वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस। अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन हुई, वेकेशन हुई 167 के अंदर, और अगर आप फेल टू सेटिस्फाई 149 सबसेक्शन 6 को आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, यानी कि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट नाउ। आगे, स्मॉल शेयर होल्डर 2 कंपनियों से ज्यादा बन ही नहीं सकते, मगर क्या 2 में बन सकते हो? हाँ, शर्त यह है कि वो जो दूसरी कंपनी है वो कंपनी के साथ किसी कंपीटिंग बिजनेस में ना हो, सेम बिजनेस के अंदर ना हो। चलिए, ये था मेरा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैंने किया डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेक्शन 153, 54, 55, 56, 57, 58, ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की बातें करते हैं। वो क्या कहता है? सेक्शन 153 कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि प्रपोज है एज अ डायरेक्टर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगा DIR 3 में अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब फी, ताकि उसे DIN नंबर मिल सके। 154 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन आने के 1 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट कर देगी DIN उस व्यक्ति को। 155 कहता है कोई भी व्यक्ति 1 से ज्यादा DIN होल्ड नहीं करेगा। 156 कहता है कि डायरेक्टर के पास जैसे ही DIN नंबर आएगा, वो डायरेक्टर इस DIN नंबर आने के 1 महीने के अंदर अंदर अलॉटमेंट कंपनी को, 1 month फ्रॉम द अलॉटमेंट कंपनी को इंटीमेट कर देगा, इंटीमेट टू कंपनी कि कंपनी मेरे पास DIN नंबर आ चुका है। उसके बाद 157 कहता है इंटीमेशन ऑफ DIN टू ROC कंपनी, उसके बाद ये जो DIN नंबर 156 में डायरेक्टर ने उसे नोटिस दिया, कंपनी उस DIN नंबर को ROC को बताएगी फॉर्म नंबर DIR 3C फाइल करके, और अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट इज लायबल टू पे 25,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। आगे बढ़ना शुरू करते हैं। 158 कहता है ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट DIN, आज के बाद अगर कोई भी वो इंडिविजुअल डायरेक्टर या फिर कोई भी कंपनी अगर कोई भी रिटर्न फाइल वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल कर रही है तो उसमें DIN नंबर इंडिकेट करना मैंडेटरी है। 159 कहता है पनिशमेंट होगी अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ 152 का। 152 कहता है मतलब अगर कंपनी बिना DIN नंबर लिए हुए आपने किसी को अपॉइंट कर दिया। 155 कहता है अगर 2 से ज्यादा DIN है आपके पास, और 156 का यानी कि डायरेक्टर ने DIN नंबर लेने के बाद कंपनी को बताया नहीं तो फिर इंप्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने तक की, और 50,000 का फाइन प्लस 5,000 रुपए पर डे का फाइन लगेगा आपके ऊपर। चलिए, उसके बाद हमने किया सेक्शन 168। सेक्शन 168 बात करता है रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर की, डायरेक्टर के रेजिग्नेशन से रिलेटेड बातें करता है। वो कहता है अगर कोई भी डायरेक्टर रिजाइन करना चाहता है कंपनी से तो फिर वो कंपनी को अपना रेजिग्नेशन लेटर सर्व करेगा और उसका रिसिप्ट करने पर, रेजिग्नेशन रिसिप्ट करने पर कंपनी उसे आरओसी को भर के भेजेगी डीआईआर 12 के अंदर, जहां पे वो बताएगी कि लो जी ये डायरेक्टर रिजाइन कर चुका है। इसके अलावा कंपनी इस रेजिग्नेशन को अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट करेगी। उसके बाद कंपनी इस फैक्ट को कि ये डायरेक्टर ने रिजाइन किया है अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में भी प्लेस करेगी इन द जनरल मीटिंग। अब यहाँ शब्द है जनरल मीटिंग, एक्चुअल में ये ड्राफ्टिंग एरर है। क्यों? क्योंकि जनरल मीटिंग शब्द नहीं होना चाहिए, लॉ मेकर्स ये शब्द करना चाहिए था तुम्हारा एनुअल जनरल मीटिंग। यहाँ पर अगेन ड्राफ्टिंग एरर लॉ मेकर्स ने कमिटेड की है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या होता है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में बनाई जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, और अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है तो वो कहां पर कंसिडर्ड होता है? हमेशा AGM के अंदर काउंट होता है, हमेशा AGM के अंदर। एक तरफ आप कहते हो कि डायरेक्टर रिपोर्ट का पार्ट बनेगा और दूसरी तरफ कहते हो कि GM के अंदर आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहां पर प्रॉपरली लिखना चाहिए था AGM के अंदर आएगा, EGM नहीं, बट यहां पर ड्राफ्टिंग एरर लॉ मेकर्स ने कमिट की हुई है। आगे वो कहता है डायरेक्टर आल्सो टू फॉरवर्ड इन DIR 11 टू द कंपनी। डायरेक्टर भी DIR 11 भर के कंपनी को DIR 11 भर कर जमा कराएगा 30 दिन के अंदर अंदर, जिसमें कंपनी नहीं आरओसी को आएगा, आरओसी को देगा DIR 11 टू आरओसी विद इन 30 डेज, और जिसमें कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन होगा प्लस रीजन बताया जाएगा कि वो रिजाइन क्यों कर रहा है। बट फॉरेन डायरेक्टर को DIR 11 से एक एग्जम्पशन दी गई। उन्होंने कहा अगर आप फॉरेन में रहते हो, क्योंकि इस पे साइन ओरिजिनल में चाहिए होते हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी CA, CS, CWA को ऑथराइज कर दो, या फिर आप किसी रेजिडेंट डायरेक्टर को ऑथराइज कर दो जो आपके बिहाफ पर यहां पर DIR 11 भर देगा अलॉन्ग विद द रीजन टू आरओसी दे देगा, और आपकी ईमेल जिसमें आपने उसे ऑथराइज किया साथ में अटैच कर देगा। आगे मैं कहता हूं रेजिग्नेशन की इफेक्टिव डेट क्या रहेगी, जिस दिन कंपनी को यह रिसिप्ट हुआ या फिर उस पर जो डेट मेंशन है, तो उनमें से जो भी बाद में है, जो भी बाद में आ रही है। आगे डायरेक्टर कंटिन्यू टू लायबल फॉर द ऑफेंस ड्यूरिंग हिज टेन्योर, जो उसके टेन्योर में जो ऑफेंस हुए ही विल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल। बट आगे मैंने इसमें लिखवाया आपको कि मान लीजिए रिजाइन कर दिया बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस रिजाइन को एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर रिजाइन करने के बाद कंपनी ने DIR 12 फाइल नहीं किया, या फिर रिजाइन करने के बाद डायरेक्टर ने आरओसी को DIR 11 सबमिट नहीं किया। दोबारा रिपीट करता हूं, मैं कहता हूं रिजाइन किया मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, रिजाइन किया DIR 12 सबमिट नहीं किया, रिजाइन किया DIR 11 सबमिट नहीं किया। तीनों ही सिनेरियो में रेजिग्नेशन वैलिड है। रेजिग्नेशन किसी भी हालत में यहां पे इन चीजों से अटकेगा नहीं, वो एकदम वैलिड है। चलिए फिर हमने कहा सेक्शन 170, वो कहता है रजिस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट KMP प्लस शेयर होल्डिंग। मतलब ये कहता है कि हर एक कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें रजिस्टर के अंदर डिटेल आएगी डायरेक्टर्स की, KMP की, ये रजिस्टर प्रेस्क्राइब फॉर्म में मेंटेन किया जाएगा, प्लस इन डायरेक्टर्स और KMP के शेयर होल्डिंग की। ये शेयर होल्डिंग कहां पर होनी चाहिए? ये शेयर होल्डिंग किसी और में नहीं बल्कि कंपनी में, एसोसिएट में, सब्सिडरी में, होल्डिंग में, और इसकी होल्डिंग की किसी और सब्सिडरी में अगर कोई शेयर होल्डिंग है तो उनकी डिटेल जरूर आएगी। आगे रिटर्न ऑफ द पार्टिकुलर ऑफ डायरेक्टर और KMP आरओसी को सबमिट की जाएगी, जब जब इनके अंदर कोई चेंज होगा DIR 12 भर के आपको आरओसी को इसकी डिटेल देनी पड़ेगी। आगे सेक्शन 171 कहता है ये जो रजिस्टर मेंटेन किया गया है क्या मेंबर इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं? द आंसर इज यस। ये कहते हैं शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, कभी भी कर सकते हो, और AGM के अंदर भी ओपन रहेगा, कभी भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। इसकी कॉपीज भी ले सकते हो, कंपनी को एक एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा, 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देगी, इसकी कॉपी दे देगी। 170 और 171 आर नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट कंपनी, जहां पर 100% कैपिटल किसके पास है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या फिर सेंटर अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 172। सेक्शन 172 क्या है? कुछ ऐसा ही है कि जिसका कोई नहीं उसका ये सेक्शन है यारो। मतलब वो कहता है कि अगर इस सेक्शन में, अगर इस पूरे चैप्टर में, डायरेक्टर के चैप्टर में कोई भी ऑफेंस हुआ और उस ऑफेंस के लिए उस पार्टिकुलर सेक्शन में कोई पेनल्टी प्रेस्क्राइब नहीं है, तो उसकी पेनल्टी यहां पर लग जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी वुमेन डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर हर कंपनी को अपॉइंट करना जरूरी है, मैं कहता हूं नहीं किया तो कोई पेनल्टी प्रेस्क्राइब नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? यहां पर आके पेनल्टी लगा दो 172 में, यहां पर पेनल्टी लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने आज सेक्शन किया ऑडिट कमेटी का, सेक्शन 177 क्या कहता है कि ऑडिट कमेटी को फॉर्म करना जरूरी है लिस्टेड कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। वो पब्लिक कंपनियां जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, और टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा है। बट यहां पर मैंने लिस्टेड कंपनी में एक शब्द लिखवाया पेंडिंग। क्यों पेंडिंग क्यों लिखवाया है? क्योंकि यहां लिस्टेड कंपनी की इंटरप्रिटेशन मुझे एलओडीआर के साथ मर्ज करके आपको करानी है, जो कि आपके एलएमएस पर मैं अपलोड करवाऊंगा कि अलग से कि यहां पर लिस्टेड कंपनी की इंटरप्रिटेशन क्या है। यहां पर हम देखेंगे प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी, बट प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी मगर प्राइवेट कंपनियों में कुछ और कहानी भी बनेगी। वो क्या, वो पूरी की पूरी इंटरप्रिटेशन मैं आपको सिखाऊंगा एलओडीआर के साथ मर्ज करके, उसके सेपरेट एलएमएस पर आएगा आगे। मगर ये जो लिमिट है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर इतने से ज्यादा, आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा, ये बिल्कुल वही की वही है जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर भी आपने पढ़ा था। चलिए, वो कहते हैं ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होनी चाहिए जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजॉरिटी में रहना चाहिए, और मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी शैल बी वेल वर्स विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन्हें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की समझ होनी चाहिए। आगे ये ऑडिट कमेटी जो है ये काम करेगी, कैसे काम करेगी, टू एक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये एक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या है, जिसका हमने मतलब समझा था, मैंने कहा था रीजनल मैनेजर एग्जाम रिकमेंड द एरिया सेल्स मैनेजर, इसका मतलब क्या है हमने देखा था, ये पेज मैं अपलोड कर रहा हूं आपके लिए। रीजनल मैनेजर का मतलब है, ये न्यूमेरिक कोड था जिसका मतलब क्या है, रीजनल मैनेजर का मतलब है रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, ये इनका कर्तव्य होगा ये ऑडिट कमेटी का। एग्जाम मतलब एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट, ये काम भी इन्हीं का होगा। रिकमेंड मतलब रिकमेंड करेंगे अपॉइंटमेंट रेमुनरेशन एंड टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। एरिया, ए स्टैंड फॉर अप्रूवल ऑफ द ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी अंडर सेक्शन 188, मतलब कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होगी तो उसके लिए ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे सेल्स, सेल्स एंड फॉर स्क्रूटनी, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होती है इंटर कॉर्पोरेट लोन की अंडर सेक्शन 186, इंटर कॉर्पोरेट लोन 186 के अंदर लोन गारंटी सिक्योरिटी, तो उसकी स्क्रूटनी करेंगे और एम मॉनिटरिंग करेंगे कि जो एंड यूज ऑफ द फंड हुआ होगा जो कि रेस किया गया है पब्लिक ऑफर के थ्रू। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया गुजरात बेस्ड कंपनी जयंत पेपर मिल्स, जहां पर पैसा पब्लिक से रेस किया गया था और उसके बाद पैसा ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने अपने कामों के लिए, निजी कामों के लिए खर्च कर लिया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि एंड यूज ऑफ फंड पब्लिक से पैसा लाया और गलत जगह यूज हो गया, तो ये काम भी ऑडिट कमेटी का ही है। तो उसके लिए कोड क्या है, रीजनल मैनेजर एग्जाम क्लियर करके आप रिकमेंड हो जाते हो, तैयार हो जाते हो एरिया सेल्स मैनेजर के लिए। चलिए, ये आपका कोड है। अब मैंने कहा था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मैं दो तरीके से बांट सकता हूं, पहला वो जो विद इन द प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ 188 होंगी, उनके लिए ऑडिट कमेटी की अप्रूवल बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, और एक वो जो कि ओवर एंड अबव दिस लिमिट होंगी उसके लिए ऑडिट कमेटी की अप्रूवल प्लस बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तीनों चाहिए होगा। क्लियर हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर हमने कहा मेक ऑल कमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑन, ऑडिट कमेटी जो है ऑडिटर के साथ मिलकर स्पेसिफिक कमेंट मंगवा सकती है कि भैया मुझे इन चीजों पर स्पेसिफिक कमेंट चाहिए। किन किन चीजों पर, पहला इंटरनल कंट्रोल हमारा कैसा है, स्ट्रांग है वीक है, स्कोप ऑफ द ऑडिट, आपने ऑडिट में किन किन चीजों को कवर किया है, रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड, यानी कि बोर्ड को सबमिट करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक बार रिव्यू करेगी ऑडिट कमेटी ऑडिटर के साथ बैठकर, तब फाइनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये सबमिट किए जाएंगे। आगे ऑडिटर और केएमपी अगर ऑडिट कमेटी में कभी जाते हैं तो इनको ये अपना पक्ष रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑडिट कमेटी को ऑडिटर के ऑडिट रिपोर्ट पर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसे स्वीकार करने से पहले ऑडिटर का पक्ष सुनेगी जरूर, मगर फिर स्वीकार करने से पहले जब ये डिसीजन लेंगे तो उस डिसीजन के अंदर ऑडिटर को पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है। सिमिलरली केएमपी को भी मीटिंग में बोलने का हक जरूर है मगर मीटिंग के अंदर इसे वोट करने का अधिकार नहीं है। चलिए आगे, बोर्ड रिपोर्ट अगर कोई 134 में जाती है जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे तो उसके अंदर जरूर बताया जाएगा कि क्या बोर्ड का या फिर ऑडिट कमेटी का डिफरेंस इन ओपिनियन था, और अगर था तो क्यों था, ये जरूर बताया जाएगा। आगे फिर हमने कहा विजिल मैकेनिज्म, जिसका मतलब है विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर मतलब ये एक तरीके का मैकेनिज्म लाया गया कि कंपनी में अगर कुछ गलत हो रहा है और इम्प्लॉय या डायरेक्टर उसके लिए कोई शोर मचाता है तो उनकी सुरक्षा की जाए, मीन टाइम ये भी इंश्योर किया जाए कि जानबूझ के कोई शोर ना मचाए, गलत शोर कोई ना मचाए। ठीक है जी, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बाय होम, किसके द्वारा फॉर्म किया जाएगा, कौन सी कंपनियों में, हर वो कंपनी जहां पर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक आया है या फिर जहां पर बोरोइंग फ्रॉम द बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 50 करोड़ से ऊपर है, इनमें होगा कहां। अगर कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है तो ऑडिट कमेटी ही विजिल मैकेनिज्म देखेगी, बट अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो विजिल मैकेनिज्म का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने में से किसी डायरेक्टर को सौंपेंगे कि आप ऑडिट कमेटी की जो पावर है विजिल मैकेनिज्म से रिलेटेड उन सबको देखोगे। आगे पर्पस क्या है, पहला अगर कोई व्यक्ति सीटी बजा रहा है, कंपनी में कोई गलत चीज पकड़ रहा है तो उस विसल ब्लोअर की रक्षा करना, टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय और डायरेक्टर, और ये इंश्योर करना कि कोई गलत सीटी ना मारे, मतलब सुटेबल एक्शन अगेंस्ट द रिपीटेड फ्रिवलेस कंप्लेन, अगर कोई गलत कंप्लेन बार बार कर रहा है किसी पार्टिकुलर डायरेक्टर के खिलाफ तो उसके खिलाफ भी सुटेबल एक्शन लेना, ये हमारा विजिल मैकेनिज्म था। फिर उसके बाद आए हम 177 पर, जो बात करता है ओमनीबस अप्रूवल की। ओमनीबस अप्रूवल का मतलब क्या होता है, मैंने अभी कहा कि 188 में कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी तो उसके लिए आपको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है, बट सवाल उठा हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए ऑडिट कमेटी को बुलाता रहूंगा, ये तो बहुत ज्यादा टीडियस टास्क हो जाएगा। इसको ओवरकम करने लिए लॉ मेकर्स ने एक नया प्रोविजन प्रोवाइड किया, उन्होंने कहा ठहरो रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हम ऑडिट कमेटी को ऑथराइज करते हैं कि ऑडिट कमेटी आप चाहो तो एक ही बार बल्क अप्रूवल दे दो, जिसे हम कहते हैं ओमनीबस अप्रूवल। अगर ओमनीबस अप्रूवल दिया गया तो ओमनीबस अप्रूवल देते हुए ऑडिट कमेटी किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ओमनीबस अप्रूवल देते हुए कुछ बातों को कंसीडर करेगी, वो बातें कौन सी हैं, मैंने कहा जी सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ ओमनीबस, किसी भी पार्टिकुलर रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड वैल्यू क्या होगी ओमनीबस की, मगर ये वैल्यू जब डिसाइड करोगे तो वैल्यू पर ट्रांजेक्शन भी डिसाइड करना और वैल्यू पूरे इन एग्रीगेट भी डिसाइड करना, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑडिट कमेटी कहेगी कि ए लिमिटेड जिसमें हमारा डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उससे पूरे साल में हम 20 करोड़ की ट्रांजेक्शन करेंगे और एक ट्रांजेक्शन की कीमत 1-2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी ऐसी। चलिए उसके अलावा जब भी आप ओमनीबस अप्रूवल दे रहे होगे ऑडिट कमेटी तो आपको DRT मतलब डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जिसे हम कहते हैं, ये कोड है याद करने का, उसे भी ध्यान देना पड़ेगा। कैसे, ऑडिट कमेटी बताएगी कि अगर उसके पास कोई अप्रूवल लेने के लिए आना चाहता है, एक ही बार ओमनीबस के लिए आना चाहता है, तो पहले डिस्क्लोजर करो पूरी ट्रांजेक्शन को इस फॉर्मेट के अंदर। दूसरा, अप्रूवल देते हुए ऑडिट कमेटी ये भी कहेगी कि हमने अप्रूवल तो दे दी मगर हम इस अप्रूवल को टाइमली रिव्यू भी करते रहेंगे। RDRT स्टैंड फॉर ओमनीबस अप्रूवल देते हुए ऑडिट कमेटी कुछ ऐसी भी ट्रांजेक्शन कह सकती है कि नहीं यहां पर ओमनीबस अप्रूवल, इस एरिया में हम ओमनीबस अप्रूवल नहीं देंगे, वो ऑडिट कमेटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन से एरिया पे ओमनीबस अप्रूवल देने में कंफर्टेबल नहीं है। ओमनीबस अप्रूवल देते हुए जब आप देंगे तो आपको कुछ बातें जरूर बतानी पड़ेंगी, वो क्या है, कौन सी रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड ओमनीबस अप्रूवल दी गई है, अमाउंट ऑफ अप्रूवल क्या है, पर ट्रांजेक्शन क्या है और इन एग्रीगेट क्या है, आगे जस्टिफिकेशन फॉर सच ओमनीबस, क्यों ये ओमनीबस अप्रूवल दी गई है, आगे नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या है, और कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो कि ऑडिट कमेटी को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो भी ऑडिट कमेटी ये इन्फॉर्मेशन दे सकती है। फिर अगर मान लीजिए कोई ओमनीबस अप्रूवल दी जा रही है मगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का अंदाजा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने कहा ना क्योंकि पास्ट के ट्रेंड को देखकर आप फ्यूचर का बताते हो कि इतनी हमने ओमनीबस अप्रूवल हम इस बार की देते हैं क्योंकि पास्ट में इतनी ट्रांजेक्शन हुई है, मगर मान लीजिए किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कितनी हुई किसी पार्टी से आपको अंदाजा ही नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी ओमनीबस अप्रूवल दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन डेट वैल्यू पर ट्रांजेक्शन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब पर ट्रांजेक्शन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप बल्क में प्रोवाइड नहीं करोगे, एग्रीगेट में नहीं बल्कि पर ट्रांजेक्शन कर दोगे 1 करोड़ उस केस में। ओमनीबस अप्रूवल एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही वैलिड रहेगी और ये किसी भी हालत में किसी सेल ऑफ अंडरटेकिंग के लिए नहीं दी जा सकती। चलिए फिर उसके बाद हमने किया कॉन्सेप्ट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी, सेक्शन 178 नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की बात करता है। ये किसके द्वारा फॉर्म होनी चाहिए, बिल्कुल सेम वही कंपनियां जो कि 177 में है, वही कंपनियां जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में है, वही कंपनियां यहां भी आएंगी। आगे कॉन्स्टिट्यूट, इसमें कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव रहेंगे कम से कम, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होगी। ये जो चेयरपर्सन है कंपनी का वो यहाँ पर मेंबर तो बन सकता है बट यहाँ का इस कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता। अब जैसे नाम पे ही जा रहा हूं नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, तो इसका काम क्या है, इसका काम है आइडेंटिफाई करना डायरेक्टर को किसके लिए, सीनियर आइडेंटिफाई करना डायरेक्टर की पोस्ट के लिए या सीनियर मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए। दूसरा, इसका काम है डिटरमाइन करना क्राइटेरिया को, क्वालिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द डायरेक्टर्स को। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको कहा था जब मैं कह रहा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्टर की जब मैं चर्चा कर रहा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नहीं है तो इसका पता कैसे लगाया जाता है, इसके लिए नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी काम करती है। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी कोई डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है या नहीं है 149 सबसेक्शन 6 में, इस पे अपनी रिपोर्ट बोर्ड को देती है, बोर्ड इसकी रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड करता है अपनी रिकमेंडेशन बनाकर मेंबर्स के पास और तब जाकर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अप्रूवल होता है। तो यानी कि इसका काम क्या है, पहला डायरेक्टर को ढूंढना सीनियर मैनेजमेंट के लिए ढूंढना, और दूसरा उनकी इंडिपेंडेंस को चेक करना, और तीसरा उनकी रेम्यूनरेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाना। अब ये जब पॉलिसी बन रही होगी तो 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, पहला पैसा इतना देना कि वो छोड़ के ना जाए, दूसरा पैसा कितना वेरिएबल होगा कितना फिक्स होगा ये डिसाइड करना, तीसरा पैसा ऐसा होना चाहिए कि परफॉर्मेंस करने वाले को ज्यादा पैसा मिले, ये 3 बातों का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने कहा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, सेक्शन 178 बात करता है कि अगर किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, डिपॉजिटर या फिर अदर सिक्योरिटी होल्डर 1000 से ज्यादा किसी भी टाइम हो गए तो वहां पर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना कंपलसरी है। ध्यान रखना और नहीं लिखा, एंड लिखा है, मतलब अगर इनको जोड़कर भी 1000 से ऊपर हो गए तब भी बनाना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, एक तो चेयरपर्सन होगा जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, प्लस बाकी मेंबर जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। बट इसका पर्पस क्या है, बिल्कुल इसके नाम के जैसा, मतलब ये स्टेक होल्डर के ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने कहा सेक्शन 179 जो कहता है पावर ऑफ द बोर्ड। अब कुछ वो कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास वो सारी पावर होती है जो कि कंपनी के पास होती है आगे, बट सेकेंड कहता है प्रोवाइडेड इट शेल बी सब्जेक्ट टू द एमओए एओए रेगुलेशन मेड इन द जनरल मीटिंग। मतलब इसका मतलब क्या है, मैंने लिखवाया जैसे इसका मतलब ये है कि मेंबर जो है जनरल मीटिंग के अंदर कि हर वो पावर जो कि जनरल मीटिंग में मेंबर के पास दी गई है पूरे लॉ में, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम इंटरवेंट नहीं कर सकते। तो पॉइंट वन और टू दोनों को साथ में पढ़ा जाए। पॉइंट नंबर वन कहता है डायरेक्टर के पास वो सारी पावर है जो कंपनी के पास है, पॉइंट नंबर टू के पास टू कहता है मगर वो सारी पावर जो कि एक्ट के अंदर, मेमोरेंडम के अंदर, आर्टिकल के अंदर मेंबर को दी गई है वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं आ सकता। यानी कि ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ, अगर कोई भी पावर मेमोरेंडम, आर्टिकल या एक्ट के अंदर मेंबर के पास है तो वो मेंबर के पास रहेगी, अदरवाइज वो डायरेक्टर के पास रहेगी फिर वो पावर, अगर मेंबर के पास नहीं है वो। तो अब कुछ ऐसी पावर होंगी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग के अंदर ही एक्सरसाइज की जा सकती है। इन्हें मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, शेयर्स, लोन्स, बिजनेस, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस फोर्थ बॉक्स अलग बनाया। शेयर्स से रिलेटेड पावर कौन सी है, कॉल करना, पैसा बायबैक करना, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी मतलब आईपीओ एफपीओ वगैरह या नई कैपिटल इशू करना। लोन से रिलेटेड जितनी पावर है, बोरोइंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, ग्रांटिंग ऑफ लोन हो गई, सिक्योरिटी और गारंटी प्रोवाइड करना, ये वो पावर है जो कि डेलीगेट की जा सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किसको, किसी भी कमिटी ऑफ द डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर को। बिजनेस से रिलेटेड पावर कौन कौन सी है, बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन मतलब चेंज ऑफ बिजनेस वगैरह करना, अमलगमेशन, टेक ओवर, अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये डिसीजन केवल बोर्ड मीटिंग में ही हो सकते हैं, ये किसी को डेलीगेट नहीं किए जा सकते और ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू भी नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस पावर्स भी हैं जो कि केवल बोर्ड मीटिंग में ही हो सकती हैं। पहला पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ द केएमपी, सिमिलरली अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल और द सेक्रेटेरियल ऑडिट। ठीक है जी, आगे फिर 187 मैंने कहा जी अभी पेंडिंग है, उसके बाद हमने 189 की बात की। 189 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई भी अरेंजमेंट जो कि कंपनी का डायरेक्टर्स के साथ हुआ है, जो 184 के अंदर या 188 के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है या फिर 188 के अंदर जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, उन सारी ट्रांजैक्शन के लिए 184 और 188 में जहां जहां डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उन सारे इंटरेस्ट को एक रजिस्टर में दिखाया जाएगा जो कि रजिस्टर बनाया जाएगा MBP4 के अंदर, और MBP4 के अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट की डिटेल आएगी जहां पर 184 और 188 में कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, उससे साइन लिए जाएंगे हर डायरेक्टर से जब भी बोर्ड मीटिंग होगी, हर एक के साइन लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टेड है, कंसर्न इंटरेस्टेड जो डायरेक्टर है ना उसके साइन लिए जाएंगे। आगे डायरेक्टर और केएमपी 30 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट होने के या फिर अपना ऑफिस छोड़ने के अपना डिस्क्लोज करेगा कंसर्न और इंटरेस्ट, और कंपनी को इंटीमेशन करेगा इस चीज की कि लो जी ये मेरा कंसर्न है, ये खत्म हो गया है या कंसर्न शुरू हो चुका है, इंटरेस्ट मेरा शुरू हो चुका है। ये जो रजिस्टर है जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है 184 या 188 के अंदर, ये रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाएगा, इसकी कॉपीज इंस्पेक्शन के लिए रखी जाएंगी, कॉपीज भी मंगाई जा सकती हैं 7 दिन के अंदर अंदर, कंपनी को रिक्वेस्ट सबमिट करो, कंपनी आपको भेजेगी। इसके अलावा ये AGM के अंदर एक्सेसिबल रहेंगे, कंपनी मेंबर कभी भी इसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा रजिस्टर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सेल और परचेज ऑफ द सप्लाई और गुड्स 5 लाख रुपए तक होती है इन अ ईयर तो आपको ऐसा कोई भी रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर कोई बैंकिंग कंपनी है और वो किसी इंटरेस्टेड पार्टी के लिए कलेक्शन ऑफ बिल का काम करती है तो उसे भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहा सेक्शन 190 कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एम्प्लॉयमेंट विद MD/WTD। MD और WTD से आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसके अंदर ये टर्म्स लिखी गई हैं ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगी और कोई भी मेंबर इसे इंस्पेक्ट कर सकता है, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। फिर हमने कहा सेक्शन 193 कॉन्ट्रैक्ट बाय द वन पर्सन कंपनी, ये दूसरे शब्दों में इस सेक्शन का नाम मैं कह सकता हूं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन द ओपीसी वन पर्सन कंपनी में। ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है अपने किसी सोल मेंबर के साथ, क्योंकि वन पर्सन कंपनी में होता ही सोल मेंबर है और वो सोल मेंबर कंपनी का डायरेक्टर भी है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल रखी जाएगी पहला राइटिंग में या फिर राइटिंग का मतलब स्टैम्प पेपर के ऊपर या फिर मेमोरेंडम के अंदर मतलब विदाउट स्टैम्प पेपर या फिर ये बोर्ड मीटिंग के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है जी। बट अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है अगर ऑर्डिनरी कोर्स में तो है मगर आम लेंथ प्राइस पर नहीं है तो सेक्शन नॉट अट्रैक्टेड। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स में है। सिमिलरली ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है बट आम लेंथ प्राइस में है, सेक्शन अट्रैक्टेड। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है। जहां जहां ऑर्डिनरी कोर्स में होगी सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये दोनों सिचुएशन मैंने बना के आपके यहां पर लिखवाई हुई है। आगे हम बढ़ते हैं। अब जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट मेंशन करोगे, तीन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन किया जाएगा, पहला राइटिंग में, दूसरा मेमोरेंडम के फॉर्म में और तीसरा मिनट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसकी इंटीमेशन आरओसी को 15 दिन के अंदर अंदर आप दोगे। 194 अभी हमने नहीं किया, फिर 195 हमने कहा ये 15G करेंगे सेबी के अंदर, ये बिल्कुल वही का वही है। धन्यवाद, 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 थैंक यू।